What is up, everybody? This is Piyush Kukreja, and you're listening to The Piyush Kukreja Show. The Piyush Kukreja Show. सो गाइज, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ही ज्यादा यूनिक और न्यू होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले SaaS इंडस्ट्री के बारे में. एग्जैक्टली SaaS इंडस्ट्री काम कैसे करती है, प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, आप कैसे आओगे इसके अंदर. बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं कि SaaS इंडस्ट्री में आना है हमको, कि कोडिंग लगती है, यानी इन्वेस्टमेंट कितना लगता है. और मुझे खासकर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज इन्वाइट उदित गोयनका. सो आई सेड लेट्स डू इट. सो आज के जो मेरे गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट, हिज नेम इज उदित गोयनका. मैं इनसे पर्सनली भी मिला हूँ 1.5 से 2 साल पहले. आई डोंट नो उदित को याद है या नहीं, हम DM कॉन्फ्रेंस में मिले थे अभी. इन्होंने बहुत अच्छी इनसाइट शेयर की थी रिगार्डिंग फेसबुक एड्स एंड पेड मार्केटिंग एंड मीडिया बाइंग. बहुत अच्छी इनसाइट शेयर की थी. सो टुडे ही इज अ पार्ट ऑफ द शो. हम बात करने वाले SaaS इंडस्ट्री के बारे में. लेट मी इंट्रोड्यूस, वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत इनका नाम फेमस है, पर फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा इनका. इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ PitchGround. PitchGround तो सबने नाम सुना होगा एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ SaaS इंडस्ट्री. वहाँ पे इसके बारे में उदित जी भी हमको बताएंगे एग्जैक्टली क्या है. And Udit is also featured in very big magazines like Forbes, Entrepreneur, and other big magazines, well-known magazines. He's into SaaS industry since 9 to 10 years. So he has immense experience and expertise in SaaS industry. So आज का जो episode होगा, आप सोच सकते हो कितना valuable होने वाला है. Because जो हमको आज share करने वाले SaaS industry के बारे में, he has 10 years of experience. So welcome to the show, Udit. I'm really grateful कि आप मेरे show पे आए हो and you request accepted my invite. Thank you so much. I'm really grateful for you, Udit.
Thank you so much, Piyush, for having me on the show. I really appreciate that.
Yeah, thank you. I hope मैंने आपके introduction में सारी points cover किए होंगे. If you think मैंने कुछ miss किया होगा, you can add it.
ज़्यादा बोल दिया शायद.
Awesome. नहीं तो मैं सोचता हूँ कम बोला मैंने. आपका जितना वो अचीवमेंट्स है, जो मैं फेसबुक पे भी आपको फॉलो करता हूँ, ऑल्सो अदर सोशल मीडिया ऑल्सो, आप मैंने जैसे कि आपका वो कीनोट भी अटेंड किया था DM कॉन्फ्रेंस 2018 में, शायद आपको याद होगा, मैं भी वहाँ पे मौजूद था. हमने मैंने क्वेश्चन पूछे थे. एग्जैक्ट राइट. सो उदित, जैसे कि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले SaaS के बारे में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत लोग बोल भी रहे थे कि SaaS के एपिसोड करोगे तो इनवाइट उदित गोयनका. आप मेरे लिस्ट में भी थे, जब भी मैं लिस्ट बनाता हूँ लाइक 50 से 60 लोग के, उसमें नाम लिख देता हूँ एंड यू वर अमॉन्ग देम. और मैंने फाइनली आपको रीशो किया एंड यू एक्सेप्टेड माई इन्वाइट, तो दैट्स ग्रेट. सो उदित, जैसे कि कुछ बिगिनर्स भी सुन रहे हैं, सो अगर आप SaaS इंडस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि एग्जैक्टली होता क्या है, SaaS प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जैक्टली SaaS क्या है.
सो SaaS बेसिकली, आप जब कोई भी आपकी सॉफ्टवेयर क्लाउड पे रन करते हो, सो वी कॉल इट अ SaaS. तो ये स्टार्ट हुआ था कुछ 15-20 साल पहले, जब Salesforce, शायद सबने नाम सुना होगा. Salesforce वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लेके वो चले गए. एंड लोगों तभी लगा था कि नहीं, ऐसे कौन होगा, कोई कंपनी पैसे नहीं देगी, कुछ नहीं देगी. और आज के टाइम पे अगर हम SaaS के बारे में बात करें, तो Salesforce इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी आउट देयर, जो US बेस्ड है. तो वहां से SaaS की जर्नी स्टार्ट हुई थी. एंड उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ 15-20 साल लगे मार्केट को अडॉप्ट करने के लिए. और पिछले 5-6 साल में एक नया बूम आया है, जहाँ पे जो नई जनरेशन है उनको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, उनको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, उनको सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन चाहिए विद अ क्लिक ऑफ अ बटन. एंड वो उनके लिए पैसे देने के लिए तैयार है. तो दिस इज वेयर कंपनियों को भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली. इससे एक चीज और भी हुआ कि पायरेसी बहुत कम हो गई सॉफ्टवेयर की, क्योंकि लोगों को अपडेट्स मिलने लग गए, लोगों को नई नई चीजें फीचर्स मिलने लग गई. और आज के टाइम पे बेसिकली कोई भी, अगर आपको टास्क भी करना है ऑनलाइन या कंप्यूटर पे कुछ भी, आपको हर चीज के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मिल जाएगा. एंड सॉफ्टवेयर हमारे लाइफ का, टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का इतना एसेंशियल पार्ट हो गया आज के टाइम पे, कि हम इसके बिना ना ही दिन शुरुआत कर सकते हैं, ना ही इसके बिना हम सो सकते हैं, ऐसा हालत हो गया हमारा. सो दैट इज व्हाट SaaS इज ऑल अबाउट. इट इज, आप अपनी जब सॉफ्टवेयर की सर्विसेज एक क्लाउड सर्विसेज पे रन करते हो, तो वी बेसिकली कॉल इट एज SaaS.
Awesome. काफी सही डेफिनेशन बताई आपने एकदम, लाइक जो बिगिनर्स को भी समझ जाए कि SaaS. और आपने ये भी पॉइंट अच्छा मेंशन किया कि आप आजकल हर एक बंदे को, कंपनी हो या कोई फ्रीलांसर हो, कि उनको एक टूल चाहिए इजीली, जैसे कि वर्क मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो, इमेजेस के लिए कैनवा, और भी बहुत सारे टूल्स है. तो सबको कुछ ना कुछ ऑनलाइन टूल्स चाहिए. और सबको ऑनलाइन ही चाहिए बेसिकली देखा जाए तो, धीरे धीरे सब ऑनलाइन जा रहे हैं। और सो मुझे तो और एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे किसी को सास इंडस्ट्री में एंटर करना है तो क्या क्या स्किल्स उसको रिक्वायर होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमको जो स्किल्स होते हैं कुछ फेसबुक एड्स वगैरह, सास के लिए हमको कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है?
तो ये आप क्वेश्चन एक डेवलपर की तरफ से पूछ रहे हो कि एक मार्केटर की तरफ से पूछ रहे हो?
एक हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं कि लेट सपोज मैं एक मार्केटर हूँ, मुझे सास प्रोडक्ट मेरा बनाना है तो मेरे पास कौन सी स्किल्स होने चाहिए, लाइक कोडिंग की स्किल्स जो होती है, क्योंकि सास आपने जैसे बोला एक ऑनलाइन टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रोग्रामिंग लगती होगी, जैसे कि वेबसाइट तो वर्डप्रेस बन जाती है, तो सास के लिए भी ऐसे कोई ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स है या हमको कोडिंग सीखनी पड़ती है, एग्जैक्टली क्या होता है?
सो आज के टाइम पे ऐसे टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो आपको नो कोड ऑप्शन देते हैं, बट वो आइडियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, एंड आपकी कोई प्रोप्राइटर कोई आप सॉफ्टवेयर को ओन नहीं करोगे बेसिकली, आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं होगी वो सॉफ्टवेयर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो इसके लिए आपको एक डेवलपर आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है अगर आप मार्केटर हो तो। एंड मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है लेकिन वो सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता एंड दे कैनॉट कोड, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर अ CTO। एक CTO ढूंढो आप जो कोडिंग में बहुत अच्छा है बट उसको मार्केटिंग नहीं आता है, या उनको मार्केटिंग करना ही नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मजा आता है और उसको सोल्यूशन सॉल्व करने में मजा आता है, जबकि एक मार्केटर जो है उनको कोडिंग नहीं आता है और उनको अपना कोडिंग में टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है, उनका फोकस यही है कि उनका स्किल मार्केटिंग में। तो अगर आप कोड नहीं कर सकते हो तो मैं हमेशा एक एडवाइस दूंगा लोगों को कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ डेवलपर डायरेक्टली ट्राई टू लुक आउट फॉर अ CTO। इससे क्या होगा कि आगे चल के आप वो CTO को अपना co-founder भी बना सकते हो। तो when you have a technical co-founder और अगर आप एक SaaS कंपनी बना रहे हो, you cannot run a company बिना एक technical co-founder, it is not possible, क्योंकि अगर आप आगे चल के ग्रो करने वाले जब भी आप ग्रो करोगे कंपनियां आपके प्लेटफॉर्म पे rely करेगी। इमेजिन अब हम Zoom पे बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, और ऑल ऑफ अ सडन अब कुछ नेटवर्क ब्रेकेज हो गया या कुछ सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर ओवरलोडिंग की वजह से सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, तो ये केस में आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये केस में। तो दैट्स व्हाई एक टेक्निकल कोफाउंडर होना आपके आपके कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है सॉफ्टवेयर के साथ।
Awesome. So, हमको इंस्टेड ऑफ हायरिंग कोडर हम अगर CTO ढूंढे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म अगर जा रहे कोई के लिए चाहता है तो CTO ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, बाद में हम इंटर्न्स या एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं एज अ कोडर्स और डेवलपर्स।
एग्जैक्टली
CTO होना जरूरी है, जैसे CTO पार्टनर
CTO विदाउट, अगर आपको टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनानी है तो आप बिना CTO के एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बना सकते हो।
Awesome.
तो ये भी है कि अगर आप गुड टेक्नोलॉजी जानते हो और आप मार्केटिंग भी कर सकते हो वो परफेक्टली दैट इज परफेक्टली फाइन, बट वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि एक कंपनी में एक डेवलपर भी है और वही मार्केटर भी है, वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, एंड अब तक मैंने वो सिनेरियो देखा नहीं है जहाँ पे कोई भी खुद कोडिंग करता है एंड उसको मार्केट भी करता है।
एग्जैक्टली जी, और आपने जैसे बोला कि हमको CTO ढूंढना चाहिए, तो क्या आप ये भी बता सकते हो कि अगर हमको मे बी CTO या मे बी एक डेवलपर ढूंढना है, अगर मार्केटिंग को तो यू नो डेवलपिंग थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है मार्केटिंग प्लस कोडिंग, अगर हमको ढूंढना है CTO तो एक कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इजीली यू नो किसी से पार्टनर कर सकते हैं, जैसे कि मे बी LinkedIn, और आपके भी एक पार्टनर है मैंने देखा है पिच ग्राउंड में, सो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो और कैसे हम CTO ढूंढ सकते हैं?
सो मैं पहले मेरे पार्टनर के बारे में बताऊंगा जिनका नाम लुकस है। सो मेरे कंपनी में मेरे दो पार्टनर्स हैं, एक वन ऑफ माय कोफाउंडर जो कंपनी का COO है, ही हैंडल्स ऑल दी ऑपरेशंस बिकॉज मैं ऑपरेशंस में बहुत 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 बेकार हूँ मैं, ठीक है। मुझे अगर आप खुद करने सब कुछ बोलोगे मैं कर लूंगा, लेकिन अगर टीम के साथ करने बोलोगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऑपरेशंस इज माय वीकनेस। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट आई हैव अ राइट पार्टनर जो पूरा का पूरा हैंडल करता है, सो मैंने अपना वीकनेस अपना स्ट्रेंथ बना लिया। उसी तरीके से मेरा जो दूसरा कोफाउंडर है उसका नाम है लुकस, सो ही इज आवर CTO। सो उसको कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो पिछले 23 साल से कोडिंग कर रहा है, वो 23 साल से एप्लीकेशंस बना रहा है, वो 23 साल से वेबसाइट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब डेवलप कर रहा है। सो आप सबसे पहले तो अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए, आपको वो कम्युनिटी में ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ढूंढो कि कहाँ पे सासी कम्युनिटी है, कहाँ कहाँ पर कोई फेसबुक ग्रुप में कोई कम्युनिटी है, या तो कोई फोरम हो गया या तो ऑनलाइन वेबसाइट हो गए। ऐसे अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडी हैकर्स हो गया, इंडी हैकर्स में बहुत पॉपुलर फोरम है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्ट्राइक। सो वहां पे आप जाके खाली पोस्ट करो कि यू आर लुकिंग फॉर अ टेक्निकल को फाउंडर। बी वेरी केयरफुल, अगर आप कभी भी कोई भी किसी को भी पार्टनर बनाते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आप एवरी सिंगल डे यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, एंड आप अपने फैमिली से ज्यादा टाइम आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन। सो स्लो पेस पे स्टार्ट करो कोई भी रिलेशनशिप, फास्ट पेस पे स्टार्ट मत करो, एंड गोल ओरिएंटेड रखो इनिशियली। बिकॉज इससे ये होगा कि अगर आपका जो एम्बिशन है वो गोल ओरिएंटेड होगा तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर बिटवीन बोथ द पार्टनर्स एट द राइट स्टेज, एंड वो राइट एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत जरूरी है। सो आप इंडी हैकर यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई भी फेसबुक ग्रुप आप खाली सास सर्च करो, आपको काफी सारे फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, आप वहां ज्वाइन करो, वहां पे पूछो आप कि यू आर लुकिंग फॉर अ टेक्निकल को फाउंडर। सो काफी सारे लोग कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपकी आइडियाज क्या है, क्या नहीं है, कितना बजट है आपका, उनको कितनी परसेंट इक्विटी मिलेगी कंपनी में। सो ऑल दीज थिंग्स आपको फिर अकॉर्डिंगली डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब करने वाले हो तो मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, आपको पता है कि आप क्या बनाने वाले हो, आपने सारी की सारी रिसर्च कर ली है बिफोर आप एक टेक्निकल को फाउंडर को ढूंढो। अगर आपकी ये सारी की सारी चीजें बेसलाइन अगर नहीं बनी हुई है तो आपको शायद से टेक्निकल को फाउंडर इतनी इजीली नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अंटिल अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जो बहुत अच्छा डेवलपर है, जो कहीं पे काम कर रहा है पिछले काफी सारे सालों से, एंड वो अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि शायद कुछ उसको भी कुछ स्टार्ट करना होगा, देन इन दैट केस आप उनसे बात कर सकते
हैं। अमेजिंग कि हम कुछ फेसबुक ग्रुप से वहां पे जा सकते हैं, लाइक सैस टाइप कर सकते हैं, तो इंडी हैकर्स आपने जो बोला वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ढूंढ सकते हैं सीडीओस और पार्टनर्स। और एक चीज और ये भी आती है, लेट्स सपोज किसी को अगर सैस प्रोडक्ट बनाना है खुद का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जैसे कि अभी आपने कुछ चीजें मेंशन की, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, तो ये सब चीजें, लाइक अब किसी को प्रोडक्ट बनाना है तो क्या क्या चीजें हमको लगती है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। देखो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ बंच ऑफ कोड्स जहाँ पे आप कोई भी चीजों को सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट कर देते हो, और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता है। जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि आपका टाइम बच जाए, ये सॉफ्टवेयर करता है। बट उसके लिए आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। अगर आप बिना प्रॉब्लम के कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसके सोल्यूशन को बना ही नहीं पाओगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप प्रॉब्लम समझो। हाँ करेक्ट,
प्रॉब्लम, लेट्स सपोज हमने प्रॉब्लम समझ लिया, तो उसके बाद लाइक क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक बिफोर फाइंडिंग अ सीटीओ, लाइक आप बोल रहे थे कि हमको पेपर पे सब होना चाहिए, सो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सको।
सो सबसे पहली चीज तो बिफोर लुकिंग इनटू दैट, आप अगर जब द मोमेंट आपको आपका प्रॉब्लम पता चल गया, प्रॉब्लम पता चलने के बाद आप पहले ये देखो कि कितने लोगों की वो सेम प्रॉब्लम है, आपका मार्केट कैप क्या है, कितने लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज अगर आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो डेफिनेटली अगर आप SaaS बना रहे हो तो दैट मीन्स आप एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी के लिए बनाओगे, राइट? सो पहले जाके थोड़ा सा आप रिसर्च करो। एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड जो कीवर्ड होगी, आप जाके वो गूगल कीवर्ड प्लानर पे या AHRefs पे, SEMrush पे, कहीं पे भी आपका जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल है, वहां जाके खाली सर्च करो, देखो कितने सर्चेज हैं। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितने लोग एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फिर ये देखो कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट में, एंड उनका मार्केट कैप क्या है, उन्होंने कितनी बड़ी कंपनी बनाई है। आपको इससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट की साइज क्या है। अगर मार्केट की साइज बहुत छोटी है तो दैट मीन्स आपको आगे चल के कंपनी ग्रो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। सो ये सारी की सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। बिफोर आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करो, अगर आपके पास ये सारी की सारी इनिशियल रिसर्च है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है, उसके बाद आप एक टेक्निकल को फाउंडर ढूंढना स्टार्ट करो, तब वो टेक्निकल को फाउंडर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा कि क्योंकि आपने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है. तो आप एक प्रॉपर, जैसे हम इन्वेस्टर्स को पिच डेक देते हैं अगर हमको फंडिंग चाहिए होती है, तो सिमिलरली एक पिच, एक प्रोडक्ट डेक बनाओ आप. तो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात मत करो, उसको छोड़ के, फाइनेंशियल्स का छोड़ के, अब बाकी सारी की सारी चीजें के बारे में बात करो. तो देखो, आप जब भी को फाउंडर हायर करते हो तो इट इज एज गुड एज पिचिंग हो गया और कुछ नहीं. तो वो रिक्रूटमेंट, इनिशियल रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी होती है. तो ये सारी की सारी चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट विद SaaS या बिफोर गेटिंग इनटू कोडिंग और एनीथिंग. सो पहले थोड़ा सा हमेशा स्टेप बैक लो, थोड़ा सा रिसर्च पे टाइम ज्यादा दो. आपकी रिसर्च अगर स्ट्रांग होगी तो आप आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो.
Awesome. मतलब काफी सही पॉइंट बताया आपने. पहले हम प्रॉब्लम देखें, फिर उसके बाद रिसर्च करें एग्जैक्टली कि हमारे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या इसकी नीड है मार्केट में, और क्या और भी लोग कर रहे हैं, कंपटीटर्स कौन से, वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है, कैसी कैसी चीजें, वो हम देखें. और एक चीज ये भी आती है, जैसे कि आपने बोला कि अराउंड 15 साल पहले सेल्स फोर्स ने स्टार्ट किया था SaaS, लाइक वो लाइक वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी वो, उसके बाद 15 साल से चल रहा है. तो आपने ये भी बोला कि हर चीज के लिए टूल्स अवेलेबल, लाइक वीडियो एडिटिंग टूल्स पकड़ लो, इमेज एडिटिंग या हर एक टूल लाइक वर्क मैनेजमेंट लाइक ट्रेलो. तो मतलब न्यू आइडिया, आपके हिसाब से न्यू आइडिया पे हमको काम करना चाहिए, ऐसा कोई आइडिया जो कभी हुआ ही नहीं है, या हम एग्जिस्टिंग आइडिया से भी कुछ कर सकते हैं, लाइक स्कोप है उसमें भी?
डेफिनेटली देखो, हर चीजों में स्कोप होती है, बट अगेन आप प्रॉब्लम को पहले समझो, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है कि जहां पे कंपनी फेल करती है इज बिकॉज वो प्रॉब्लम नहीं समझती है लोगों की. सो अगर आपको एग्जिस्टिंग सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में है, उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन आप पूछो लोगों से कि क्या इसको बेटर वे से सॉल्व किया जा सकता है. अगर आप बेटर वे से वो कोई चीज सॉल्व कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप एक कॉम्पिटिटर का भी मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो.
Awesome. तो मतलब हम existing देखे, अगर existing solution है भी तो हम थोड़ा सा और क्या unique कर सकते हैं और क्या चीजें हम इसमें add on कर सकते हैं, वो हम देखे.
नहीं, so this is where companies again mistake करती है कि वो देखती है कि अरे हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, चलो इसका alternative बना के बेचती है, और वो कंपनी कभी कामयाब नहीं होती है, वो कंपनी हमेशा फेल होती है. अगर आपके पास, देखो अगर आपने सॉफ्टवेयर बना भी दिया ना, तो आपको बेचना भी पड़ता है, राइट? एंड इन ऑर्डर टू सेल एनीथिंग यू नीड टू हैव अ स्टोरी. अगर आपका स्टोरी नहीं है, ठीक है, अगर आप स्टोरी नहीं बना सकते हो या आपके जर्नी का एक स्टोरी नहीं है, तो आप एक खाली प्रोडक्ट बन के रह जाओगे. सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब कोई भी डिसीजन लो, क्योंकि SaaS में एक टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए होता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई कि आप कोई भी अगर सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हो, पहले ये समझो कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानते हो कि नहीं जानते हो. अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझते हो तो ही आप सोल्यूशन पे जाओ, नहीं तो वो सोल्यूशन पे मत जाओ, नहीं तो वो सोल्यूशन मत बनाओ आप.
Awesome. काफी अच्छी चीज आपने शेयर की कि हम सोल्यूशन पे मेन फोकस करें, लाइक प्रॉब्लम पे, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारी स्टोरी क्या है, उसका कैसे हम सोल्यूशन दे सकते हैं. और आपने अभी इन्वेस्टमेंट की बात भी की, तो लेट्स सपोज किसी बिगिनर को स्टार्ट करना है, शायद वो जॉब करता है, उसको SaaS में एंटर करना है, उसकी कुछ 1-2 साल से उसको करना है और डेवलपर को भी करना है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? क्या हमको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स चाहिए, या हम मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, या कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमको लगेगी SaaS इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए?
देखो, बेस्ट पार्ट, अगर आप एक कोफाउंडर ढूंढते हो एंड एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ढूंढते हो, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी टाइम होगी खाली, आपकी कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होगी इनिशियली, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग स्टार्ट कर दोगे, जो प्री मार्केटिंग हम कहते हैं, प्री मार्केटिंग स्टार्ट कर दोगे, एंड आपका जो कोफाउंडर, टेक्निकल कोफाउंडर होगा, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा. सो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर आपका इनिशियल टाइम, आपको और कुछ नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है अभी. तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको आपकी जर्नी इजी करनी है, देन आप एक टेक्निकल कोफाउंडर रखो जिनकी जिसकी कंपनी में इक्विटी हो. तो इससे क्या होगा कि आपका जो पार्टनर है वो भी 1000% देगा, 100% नहीं. क्योंकि अगर आप एक डेवलपर रखते हो जो कि एज जस्ट अ टीम मेंबर या एम्प्लॉई है, वो वर्सेस योर पार्टनर, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव द राइट पर्सन. और उसके बाद आपकी मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट इनिशियली कुछ नहीं होगी. एंड अब जब कोई प्रोडक्ट भी बनाते हो तो आप एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट मत बनाओ. सबसे पहले एक एमवीपी बनाओ. एमवीपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. कि आपने एक सेट, एक बहुत बड़े चैलेंज को मॉड्यूल्स में तोड़ दिया है एंड आपने सबसे पहला मॉड्यूल बनाया है एंड आपने वो स्टार्ट करना, वो सेल करना स्टार्ट कर दिया है. तो आप जब वो सेल करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या आपका प्रोडक्ट राइट मार्केट फिट है. अगर आपका प्रोडक्ट राइट मार्केट फिट नहीं है तो इनिशियली आप कस्टमर्स भी ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे. सो अब इसके लिए काफी सारी CRM कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, वो स्टार्ट करती है विद समथिंग लाइक CRM फॉर रियल एस्टेट हो गया, CRM फॉर लॉयर्स हो गया, जबकि सोल्यूशन एक ही होता है. बट इससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे जब टारगेट करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं वो इंडस्ट्री में. तो आपको यूजर्स एक्वायर करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि सामने वाले यूजर को ये लगता है कि आपसे बेटर वो प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो उसमें. तो दिस इज द रीजन वाई आप सबसे पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद उसको मार्केट में लेके आओ, फिर देखो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या डिमांड आ रही है. एंड उसके बाद अगर कंपनी ग्रो कर रही है देन आप कंटिन्यूसली, फिर तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है. फिर तो आप फीचर्स डेवलप करते रहे तो फिर आपकी कॉस्ट आती है, सर्वर की कॉस्ट आती है और बाकी रिलेटेड कॉस्ट आती है, मार्केटिंग की कॉस्ट आती है, एड्स अगर आप रन करोगे तो कॉस्ट आती है. नहीं तो इनिशियली अगर आप खाली एमवीपी बना रहे हो और अगर आपके पास टेक्निकल कोफाउंडर है तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं है. बट अगर आपके पास टेक्निकल कोफाउंडर नहीं है और अगर आप कोई डेवलपर हायर कर रहे हो तो डिपेंड करता है अब कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका एमवीपी कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप कोई अच्छा एक डेवलपर हायर करोगे, बहुत अच्छा, जिसके पास एटलीस्ट 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो, एंड डेफिनेटली आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज मत करो. आप अच्छा डेवलपर हायर करो, क्योंकि मैंने ये मेरे जर्नी में के स्टार्ट में मैंने मिस्टेक किया था, जब जहाँ पे मैं पैसे बचाने का सोच रहा था और मैंने वो पैसे बचाने के चक्कर में बहुत गलत लोगों को हायर कर लिया एंड उसका कॉम्पनसेशन मुझे बाद में भुगतना पड़ा. सो आप क्वालिटी के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो. अच्छे लोगों को हायर करो टीम में भी एंड उनको अच्छा पे करो. ये बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. अगर आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करोगे और पैसे बचाने के की फिरात में रहोगे तो आपका आउटपुट भी वैसा ही आएगा. क्योंकि कोई बंदा या बंदी एक लेवल पे जब पहुंचता है एंड वो अगर सैलरी वो स्पेसिफिक चार्ज करता है या एक मॉनिटरी एक्सपेक्ट करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो एक्सपेक्ट करता है. अगर आप सस्ते डेवलपर्स को हायर करोगे तो आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा, जो कि आप काफ़ी सारे आपको सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं या आपका एप्लीकेशन फट सकता है 10 यूज़र आने के बाद या 100 यूज़र आने के बाद. अब ये सब प्रॉब्लम होगा तो आप स्टार्टिंग से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम डील करोगे बाद में. सो ये केस में अगर समझो कि अगर आपने एक डेवलपर हायर किया तो यूजुअली एक एमवीपी बनाने के लिए 2-3 महीने लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं कोई भी सिंपल सा एमवीपी बनाने के लिए कोई भी बड़े प्रॉब्लम का. तो अगर आप एक अच्छा डेवलपर हायर करते हो तो समझो कि आप उसको 1.5-2 लाख रुपया महीना दोगे तो आपका एमवीपी का कॉस्ट करीबन भी 4-6 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा. था
ऑसम, काफ़ी सही चीज़ बोली आपने कि अगर हमारे पास कोफाउंडर रहा जो टेक्निकल एस्पेक्ट CTO है तो हमको सिर्फ हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा वो टाइम होगा और वो जो CTO होगा वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा कंपेयर टू डेवलपर, क्योंकि वो खुद एक पार्टनर, उसको भी कुछ शेयर मिलने वाला है उसका. और आपने बोला अगर हमको लेट सपोज CTO नहीं मिल रहा है, आपने बोला कि हम डेवलपर हायर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस हायर करें, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस आपने बताया कि जिसको एटलीस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस और वो अच्छा काम करता है, क्वालिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज ना करें और अराउंड 1-1.5 लाख महीना लेगा. सो उदित, एक क्वेश्चन इसमें ये भी होगा लाइक लेट्स सपोज 1-1.5 लाख यू नो एक थोड़ी सी बड़ी अमाउंट हो जाती है लाइक स्पेशली फॉर इंडियंस, तो क्या किसी को अगर स्टार्ट करना है तो किसी के पास बजट लेट्स सपोज 10-20 हज़ार है, क्या वो स्टार्ट नहीं कर सकते? मे बी कुछ छोटी चीज़, मे बी गूगल क्रोम एक्सटेंशन या मे बी कोई छोटा सा टूल. तो आप क्या इसके बारे में क्या बोलना है, लाइक अगर किसी के पास छोटी सी 20-25 thousand या कुछ भी?
तो यहाँ पे बात यही आ जाती है, देखो आपको कमाने लाख हो राइट, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़े 1000 में, तो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो क्वालिटी के साथ. आपको डेवलपर्स 10,000 के भी मिलेंगे, 10 लाख रुपए महीने के भी मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पे आ जाता है क्वालिटी. आप देखो, अब अगर आप घर लेने जाते हो तो आपको ये 15 लाख के भी आज के टाइम पे 2 BHK मिलेंगे, 15 करोड़ के भी मिलेंगे, ठीक है? आपको किस लाइफस्टाइल में जीना है, कैसे जीना है, आप उसके हिसाब से आप पे करते हो और वो एरिया में जाते हो, ठीक है? सिमिलरली हम जब एक कंपनी बनाते हैं और हम जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. एंड अगर यूजर आपके स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो आप बहुत जल्द, जितने जल्दी आपने कस्टमर एक्वायर किया है उतने जल्दी आप उसको लूज कर लोगे. तो आपने जो हजारों लाखों आप जो एड पे या मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे या आपका टाइम भी वैल्यूएबल आप जो स्पेंड करोगे वो सबका सब पानी में चला जाएगा. सो क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो. ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ये मिस्टेक किया था मेरे इनिशियल जर्नी में, जहाँ पे मैंने जब इनिशियल कपल ऑफ डेवलपर्स मैंने टीम में हायर किए थे लोकली, वो भी मैंने हायर करके मेरी ऑफिस में मैंने उनको बिठाया था और पैसे बचाने के चक्कर में मैंने सस्ते डेवलपर्स हायर किए थे. मुझे आज भी कभी कभी वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है क्योंकि वो टाइम के जो कस्टमर्स थे जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किए दे आर स्टिल कनेक्टेड. अब तो खैर लाइक अब तो दे आर वेरी हैप्पी विद माय सर्विसेज एंड एवरीथिंग, बट वो टाइम पे आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ रेपुटेशन बिकॉज ऑफ दैट. तो वो मत करो आप. अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो वो दिल से बनाओ, अच्छे से बनाओ या मत बनाओ.
Awesome. काफी सही बोला आपने कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. तो वो देख ये भी चीज, मतलब मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि किसी को अगर SaaS इंडस्ट्री में एंटर करना है जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स, जस्ट एंटर करना है, बिग स्केल पे भी धीरे धीरे हो जाएंगे, जस्ट टू एंटर कि मेरे को देखना एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन प्रोडक्ट. काफी लोग जैसे क्रोम एक्सटेंशन बनाते हैं कुछ भी, तो क्या एंटर करने के लिए भी वो इतने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकता? लाइक बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट तो आप इस पे अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, मे बी कोई बिगिनर सुन रहा है.
पैसे आपकी इसी पर डिपेंड करेंगे कि आप किस टाइप की एक्सटेंशन बनाना चाहते हो, ठीक है? एंड मैं वही बोलूंगा कि अच्छे डेवलपर हायर करो. एंड अच्छा डेवलपर एक कॉस्ट पे आता है, एक एक्सपेंस पे आता है, तो आप उसको एक्सपेंस मत समझो, आप उसको इन्वेस्टमेंट समझो. अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो. अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करोगे या गलत पर्सन पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो वो केस में अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बना रहे तो आप क्वालिटी के साथ, अगेन मैं वही बोलूंगा कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो. आप या तो कोई चीज अच्छे से बनाओ या तो मत बनाओ. सो अगर आपको लगता है कि आपका उतना बजट नहीं है और अगर आप एक मार्केटर हो थोड़े प्रोजेक्ट्स उठाओ. अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रेंथ है थोड़े प्रोजेक्ट्स उठाओ और कंपनियों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको मार्केटिंग में हेल्प करो, सेव करो. अगर आपके पास उतने सेविंग हो गई उसके बाद आप स्टार्ट करो. कोई भी चीज जस्ट बिकॉज सब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप भी वो इंडस्ट्री में जंप कर लो अनटिल एंड अनलेस द टाइम इज राइट. सो मैं वही बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो कभी भी.
एग्जैक्टली, काफी अच्छी पॉइंट बताया. आप किसी बार इन्वेस्टमेंट नहीं भी तो प्रोजेक्ट्स उठा के या जॉब करके काम करके पैसे कमा के सेविंग करके फिर वो इन्वेस्ट करें. ये बहुत अच्छी आपने बात कही. जो लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं उनकी भी एक माइंडसेट चेंज होगा कि हाँ हम पैसे कमा के सेव करके हम 1-1.5 लाख बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी हमको लगेगा.
एग्जैक्टली.
या और एक चीज ये भी आती होती है, लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट बन गया, क्वालिटी प्रोडक्ट हमने बनाया, फिर SaaS प्रोडक्ट हमारा बन गया, तो पैसे कमाने के क्या-क्या तरीके, व्हाट आर द वेज टू यू नो मोनेटाइज आवर SaaS प्रोडक्ट, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं उससे?
देखो SaaS में इट्स वेरी सिंपल. अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया है तो वो लोगों को ढूंढना स्टार्ट करो जिनकी वो प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप वो लोगों को नहीं ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आप वो सोल्यूशन सेल नहीं कर पाओगे. देखो दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक कस्टमर ऐसा होता है जिनको पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम है, राइट? और एक कस्टमर ऐसा होता है कि जिनको पता होता है कि उनको प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले आप जो कस्टमर को पता है कि उनको प्रॉब्लम है आप वो कस्टमर को रीच आउट करना स्टार्ट करो, ठीक है? और वो टाइप के कस्टमर है जो शायद आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आप उनको रीच आउट करना स्टार्ट करो, उनको अप्रोच करना स्टार्ट करो. जो दूसरे टाइप के कस्टमर होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको फिर धीरे धीरे आप एजुकेशन स्टार्ट करो. उनको बताओ कि ये होता है, ये मार्केट में ऐसा होता है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको बेटर वे में किया जा सकता है. तो
जब उनको उसके बारे में पता चलता है एक सोल्यूशन के बारे में, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर टाइम बचाता है एंड इसलिए ही लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं. तो जब उनको ये दिखता है कि आपका सोल्यूशन जेन्युइनली बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपका सॉफ्टवेयर जेन्युइनली बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, देन डेफिनेटली वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं. तो कितने प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो खाली वन टाइम कॉस्ट में कंपनी सेल करती है, बिकॉज वहां पे कॉस्ट एसोसिएटेड ज्यादा नहीं होता है, और कितनी कंपनियां ऐसा होती है जो कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है. तो यहीं पे SaaS इंडस्ट्री का इंटरेस्ट काफी लोगों को आया, क्योंकि यूजुअली अगर आपका सोल्यूशन अच्छा है तो कस्टमर आपके साथ महीनों महीनों इन सालों रहते हैं, एंड आपने एक बार वो कस्टमर एक्वायर कर लिया तो वो हर महीने उसके पैसे देता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर कि आप आपकी पॉडकास्ट जूम पे रन कर रहे हो, तो एवरी मंथ आप जूम को पे करते हो, राइट? तो नाउ जूम के लिए आप एक अच्छे और रेकरिंग कस्टमर हो गए. उन्होंने शायद मार्केटिंग में आपके जो स्पेंड किया था दैट वाज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर देम, ठीक है, लेकिन उसका रिटर्न उनको कंटिन्यूसली आते जा रहा है. एंड आपने कितने सारे लोगों को रेकमेंड किया होगा जूम एज अ प्रोडक्ट, तो वर्ड टू माउथ के वजह से भी कितने लोगों ने, कितने हजारों लोगों ने शायद जूम करना स्टार्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको जूम यूज करते हुए देखा. तो उसी तरीके से कोई भी सोल्यूशन आप जब बनाते हो तो लोगों को बताना स्टार्ट कर दो कि आपने ये सोल्यूशन बनाया है, एंड उसके बाद लोग अपने आप देखेंगे कि अरे हाँ ये जेन्युइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड लोग आके सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर देंगे आपके पास.
Awesome. बहुत अच्छे तरीके बताया कि अर्निंग सोर्सेज जो होते हैं हम कमा सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम वैसी होनी चाहिए और हमको वैसे लोग ढूंढने जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है ताकि हम उनको हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें.
SaaS इज अ इंडस्ट्री, आप इजीली 70-80% मार्जिन्स पे मार्जिन्स आप कमा सकते हो SaaS में, वेरी इजीली.
तो दैट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री, लाइक अगर हमने अच्छे से स्टेप्स लिए, अच्छे से सब सीखा, अच्छे से इंप्लीमेंट किया, जैसे आपने बोला क्वालिटी अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स.
Oh, definitely. अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो इन दैट केस आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो. अब मैं जूम का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनका सिक्योरिटी की बहुत बड़ी इशू हो गई थी, उसकी वजह से कितने कंट्रियों ने गवर्नमेंट ने जूम को बैन कर दिया. तो इमेजिन करो अगर वो सिक्योरिटी के जो प्रिकॉशंस है, मेजर्स है, अगर उन्होंने एक साल पहले ले लिए होते थे तो उन्होंने जो यूजर्स कितने सारे एक्वायर किए शायद वो चर्न नहीं किया होता, और उनकी जो इतनी बड़ी नेगेटिव प्रेस हुई शायद वो नेगेटिव प्रेस नहीं हुई होती, राइट? उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया, बट अब वो चीजें ठीक कर रही है. बट लेकिन उन्होंने जो यूजर लूज कर दिया एक मोमेंटम की वजह से, वो शायद उनको वो यूजर वापस ना मिले, लेकिन यहीं पे दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है. सो दिस इज द रीजन वाय आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, मैंने ये दो चीज बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना रहे हो या आप जब SaaS में एंटर कर रहे हो.
ओके, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी. तो वो जैसे हमारा लेट्स सपोज प्रोडक्ट बन गया, हमको पता भी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, लाइक SSM अर्निंग करने वाले, हमारा प्रॉब्लम भी अच्छा है, लेट्स सपोज सॉल्यूशन अच्छा है, सो इसकी यू नो लॉन्च स्ट्रेटजी क्या होगी और हम कैसे हमारे पहले 1000 यूजर्स लेके आएंगे एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी.
सो दिस इज वेयर आप या तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एट पिचग्राउंड हम SaaS कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एंड या तो आप किसी के साथ जाके आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो जहां पे आपका इनिशियल कॉस्ट ना हो ज्यादा. सो वो आप जब कोलैबोरेशन करते हो और अगर आपकी सोल्यूशन अच्छी है तो वो प्लेटफॉर्म्स आपको इंस्टेंटली लाखों यूजर तक पहुंचा देते हैं आपका सोल्यूशन. तो इसके वजह से आपका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, एंड आप नए लाखों हजारों नए कस्टमर आप एक्वायर कर लेते हो ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने US में किकस्टार्टर और इंडिगोगो का नाम सुना होगा.
जी एग्जैक्टली. तो, सुना.
कोई भी आज के टाइम पे एक नया प्रोडक्ट, हार्डवेयर प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है तो वो चाहता है कि वो ये प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली लॉन्च करे ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ बन रहा है या ऐसा कुछ हम बना रहे हैं. सो जब लोग देखते हैं कि अरे हाँ ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट आता है तो दो चीजें होती है. सबसे पहले तो एक ट्रस्ट आता है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पे है, एंड वो प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी पूरा रिसर्च किया हुआ है, तो एक ट्रस्ट आता है. एंड दूसरा जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट पार्ट, एंड दूसरा आप इंस्टेंटली वो प्लेटफॉर्म के यूजर्स के सामने आ जाते हो. तो सिमिलरली पिचग्राउंड इज बिल्ड फॉर SaaS कंपनीज, तो जहाँ पे हमारे पास काफी सारे अर्ली अडॉप्टर यूजर्स हैं जो नए सॉफ्टवेयर के लिए पैशनेट है. तो अगर किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो दे कैन ऑलवेज लुक आउट फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे वो पिचग्राउंड पे एज अ प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, या कोई भी सिमिलर प्लेटफॉर्म जो भी अवेलेबल है लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंस्टेंटली एक आपका ग्रोथ हैक हो जाएगा. जहाँ इनिशियली जो लाइक या तो 500 कस्टमर या 1000 कस्टमर बहुत जल्दी एक्वायर कर लोगे कुछ महीनों के अंदर ही, तो आपकी जो इनिशियल जर्नी है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. अगर आप वो खुद से करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको एक साल डेढ़ साल ज्यादा लग जाए बेसिकली.
ओके ऑसम. लाइक हम कोई प्लेटफॉर्म से कोलैब करें जस्ट लाइक पिचग्राउंड, तो जैसे कि आपने अभी पिचग्राउंड की बात बताई कि पिचग्राउंड से कोलैब कर सकते हैं, बट कैन आई आस्क लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज पिचग्राउंड, में क्या क्या होता है लिसनर्स को और जानकारी देने के लिए कि पिचग्राउंड के बारे में. मे बी कोई लिसनर सुन रहा है उसका खुद का SaaS प्रोडक्ट होगा या मे बी वो बनाने का सोचता होगा, सो हाउ पिचग्राउंड कैन हेल्प एंड व्हाट एग्जैक्टली इज पिचग्राउंड.
सो सबसे पहले तो हम जब भी हम SaaS फाउंडर से बात करना स्टार्ट करते हैं एंड जब तक उनका प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव जाता है, तो ये करीबन करीबन भी 5 से 6 महीने का प्रोसेस है. क्योंकि हम जब अर्ली स्टेज टेक कंपनी अर्ली स्टेज SaaS कंपनी के साथ हम जब भी बात करते हैं तो हम बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स देखते हैं. जैसे उनकी UI UX अच्छी नहीं हुई, या तो वो कोई एक स्पेसिफिक फीचर इंडस्ट्री में लैक कर रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना शायद कस्टमर ही बोलेगा कि हम परचेज नहीं करेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, आज के टाइम पे अगर आप कोई भी मार्केटिंग और सेल्स प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर आपके पास Zapier इंटीग्रेशन नहीं है तो इंस्टेंटली कस्टमर बोलेगा कि हम परचेज ही नहीं करेंगे जब तक इंटीग्रेशन ना हो, क्योंकि उनको उनका डेटा दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ उनको कम्युनिकेट करवाना है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि सब चाहते हैं कि उनकी सारी की सारी प्रोसेस एज ऑटोमेटेड एज पॉसिबल हो जाए. सो ये सारी की सारी चीजें हम जब कोई कंपनी हमारे पास अप्रोच करती है तो हम उनसे बात करते हैं और चेक करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें सॉर्टेड है कि नहीं है. और जब ये सारी की सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, जो कि हम फर्दर मार्केट रिसर्च करते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं उन SaaS कंपनियों के लिए कि ये इस तरीके से करना है या ये इस एंगल से सेल करना है या ये स्पेसिफिक एंगल यूज करना है, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है. तो हम वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं जिसमें 1-1.5 महीना और लग जाता है. और उसके बाद हम फिर 1-1.5 महीने पहले हम प्री मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. तो हम कॉन्टिन्यूसली करीबन करीबन भी 1000 के आसपास नए यूजर हर दिन एक्वायर कर रहे हैं अभी, एवरी सिंगल डे एट करंट पेस. एंड हम ऑलमोस्ट 100% ऑन मंथ टू मंथ के बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्विजिशन. अब हमारा फोकस वही है कि हम नए नए यूजर्स को प्लेटफॉर्म पे लेके आते जाए, एट द सेम टाइम हमारे पास नई नई SaaS कंपनियां भी आ रही है. सो यहाँ पे एक SaaS कंपनी को भी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल गया टू रीच आउट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड एक एंड यूजर को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया होम दे कैन ट्रस्ट कि अरे हाँ, कि अगर हमको सॉफ्टवेयर से कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, वो सपोर्ट रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. तो उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स बेसिकली काम करती है, कोई भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स काम करती है.
ऑसम. तो आज आपने फाइनली मैंने पिचग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, क्योंकि पिचग्राउंड तो आज ऐसा ब्रांड बन गया स्पेशली इंडिया में, क्योंकि मैं भी आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ, तो मैंने काफ़ी बार पिचग्राउंड की एड्स भी देखी है. लाइक रिसेंटली आपका मैंने एक बैकग्राउंड रिमूवल टूल देखा था, स्टिल मुझे उसकी एड्स भी आती, अमेजिंग टूल. लाइक एक ही मतलब कुछ ही मिनट में वो बैकग्राउंड रिमूव सेकंड्स से इमेज अपलोड के बाद रिमूव कर देता है. तो उधर बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हमको सुन रहे हैं अभी, लाइक मैं खुद भी डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा पॉडकास्ट भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है. तो ऐसे पिचग्राउंड में बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे कोई 3 टूल्स आप बता सकते हो आपके भी फेवरेट और बेस्ट 3 टूल्स जो डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे और जो पिचग्राउंड पे है
अभी जो करंटली अवेलेबल है उनमें से?
हाँ, करंटली अवेलेबल में से 3 बेस्ट टूल्स जो डिजिटल मार्केटर को यूजफुल होंगे.
पहला सोल्यूशन तो मैं बोलूंगा आर्कबी, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है. फाउंडर बहुत बढ़िया फाउंडर है, उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. आप पूरी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, आपके टीम का एक प्रोसेस, सब डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो. बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है. सबसे पहला आर्कबी,
फिर उसके बाद दूसरा एक नया बहुत यूनिक सोल्यूशन बना हुआ है जो कि है पाथफिक्स, जो आपको ओऑथ इंटीग्रेशन बहुत जल्द करवाता है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि कंपनी काफी दिन लगा देती है एक इंटीग्रेशन करने में, तो आप पाथफिक्स यूज करके आप बहुत जल्द वो इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये SaaS कंपनियों के लिए बहुत बहुत टाइम सेवर का काम करता है। तो एज अ SaaS कंपनी आई वुड से कि ये बहुत अच्छा सोल्यूशन, लेकिन अगर आप SaaS कंपनी नहीं हो तो इनक्लिक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। तो अभी काफी सारे लोग जो इनक्लिक परचेस कर रहे हैं उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी यूज की है पैसे बनाने के लिए, जहां पे वो ब्रांड रिपोर्ट्स और कॉम्पिटिटर रिपोर्ट्स जनरेट करके लोगों को सेल कर रहे हैं, दूसरे कंपनियों को सेल कर रहे हैं। एंड वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको खाली 15 सेकंड लगता है इनक्लिक के अंदर, एंड आप लिटरली वो रिपोर्ट 3,000 रुपए में या 5,000 रुपए में सेल कर सकते हो बहुत आसानी से। या आप वो रिपोर्ट को एज अ लीड मैग्नेट यूज करके आप यूजर्स एक्वायर कर सकते हो आपकी कंपनी के लिए, एंड देन वो यूजर्स को और वो लीड्स को आप पिच कर सकते हो। सो अभी करंटली इनक्लिक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, और उसके बाद स्लैजर जो कि बैकग्राउंड रिमूवल टूल है, बहुत बढ़िया टूल है। कोलकाता की कंपनी है, इंडियन फाउंडर्स हैं, एंड उन्होंने बहुत मेहनत की है सोल्यूशन डेवलप करने के लिए, एंड वो कंटिन्यूसली अपडेट करते जा रहे हैं। सो अगर आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो या फोटोग्राफर हो, एंड सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास हजारों इमेजेस होते हैं, लेकिन जब एडिटिंग के बारे में बात आती है तो उनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो यहीं पे स्लैजर ने बहुत बढ़िया काम किया है, जहाँ पे आप हजारों इमेजेस को इमेजेस का बैकग्राउंड विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड रिमूव कर सकते हो खाली एक क्लिक ऑफ अ बटन। सो ये तीन सोल्यूशन मैं रिकमेंड करूंगा, तीन या चार सोल्यूशन डिपेंडिंग अगर आप डेवलपर हो या ना हो, विच इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन पिचकाउंट।
So guys, ये तीन या चार टूल्स उन्होंने जो मेंशन किए, चार टूल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, अगर आपको ये टूल्स चेक करो आपको लगता है कि आपको यूज हो सकते हैं वो। और जैसे कि जो इन्होंने इनक्लिक बताया, मैं खुद पर्सनली अभी जाके मैं चेक करूंगा, एंड विल टॉक टू माई टीम। जैसे कि आपने बताया कि उसमें रिपोर्ट्स 15 सेकंड के अंदर वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, मिल सकती है ना, हम उसको भी कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें एज अ लीड मैग्नेट भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हमको लीड जाएगी।
Awesome. जब फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लीड मैग्नेट आपके पास होनी चाहिए। कॉम्पिटिटर्स के पास जाओ, इनक्लिक में जाओ, आपकी कॉम्पिटिटर्स की सोशल मीडिया रिपोर्ट डाउनलोड करो, चेक करो वो क्या कर रही, एंड उसको एज अ लीड मैग्नेट सेल करो। नाउ ऐसा 10 रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, एंड आपके पास बहुत बढ़िया लीड मैग्नेट हो गया एक मिनट के अंदर ही, एंड उसको यूज करना स्टार्ट करो। एंड दीज आर द वेज आप चीजों को ऑटोमेट करना सीखो जल्दी कर, इस तरीके से आप चीजों को जल्दी भी कर सकते हो, एंड आपका जो ऑपरेशनल फ्लो है, मार्केटिंग फ्लो है, वो इम्प्रूव कर सकते हो।
Awesome. So guys, ये इनक्लिक जो टूल है जरूर चेक करना, और बाकी के तीन टूल्स भी आप जरूर चेक करना अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, खासकर वो जो ई कॉमर्स में जो लोग आपको बताया आजकल लोग बहुत लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सबसे मेन पार्ट जो होता है प्रोडक्ट का होता है बैकग्राउंड रिमूवल। तो आपने जो टूल बताया वो तो बहुत यूजफुल होगा, और आपने खास कर बताया कि इंडियन फाउंडर्स है। सो गाइज जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और वो टूल्स को ग्रैब कीजिए, देखिए एग्जैक्टली बेस्ट डील अभी चल रही है, मैंने देखी थी, आप वो ग्रैब कर सकते हैं। ऑसम। सो उदित, लास्ट थिंग वुड बी लाइक, आप जैसे कि 10 साल से इस इंडस्ट्री में हो, सो व्हाट वुड बी योर बेस्ट एडवाइस फॉर someone who is in who is starting out into SaaS or who is into SaaS right now?
As a marketer or as a developer? Because dono ka jo perception hai bahut different hai.
Okay, you can tell as a marketer, kyunki marketing podcast, you can tell as a marketer.
Agar aap as a marketer start kar rahe ho, to maine jaise pehle bataya tha ki aap sabse pehle problem dekho, aap apni problem understand karo, and dekho ki already kitne solutions available hai. अगर आपको नहीं पता है कैसे सर्च करना है, तो आप शायद G2 क्राउड पे चले जाओ या कैप्टेरा पे चले जाओ, वहाँ चेक करो, या तो producthunt.com पे चले जाओ, वहाँ चेक करो कि कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है या अपकमिंग सोल्यूशन आ रही है नहीं आ रही है, या सिंपल गूगल सर्च कर लो, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो मार्केट में जिन्होंने कोई सोल्यूशन बनाया है वो किस तरीके से उन्होंने सोल्यूशन बनाया है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करो, एक कॉन्क्रीट रिसर्च करो बिफोर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करो या अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करो। अगर आपकी रिसर्च बहुत कॉन्क्रीट है तो आप ना ही एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, बट एट द सेम टाइम आप वो प्रोडक्ट आपके यूजर तक बहुत जल्द ले जा पाओगे। सो मार्केट साइज समझो, अगर आपकी मार्केट साइज ही छोटी है तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी, एक टाइम के बाद आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सारी की सारी चीजों को फैक्टर इन करो, एक स्वॉट एनालिसिस करो, SWOT analysis करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ this is a good scope or not. And problems बहुत है. आपने रोज के workflow में अगर आप देखोगे आपको कोई ना कोई problem मिल जाएगा. आपको कहीं पे problem ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. पहले ये आप start करो, आप देखो कि दिन में आप कैसे करते हो, क्या करते हो, किस तरीके से आप अपना डे स्टार्ट करते हो और किस तरीके से डे एंड करते हो. क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप उसको स्पीड अप कर सकते हो, वो चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करो और उसके अराउंड फिर देखो कि कोई सोल्यूशन बन सकता है कि नहीं. तो एज अ मार्केटर मैं ये रेकमेंड करूंगा. दूसरी चीज ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम SaaS फाउंडर बनना चाहते हो तो बिफोर स्टार्टिंग योर ओन SaaS कंपनी, कोई एक SaaS कंपनी में आप एज अ जॉब करो, एक साल दो साल, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपको उसके बाद समझ में आया कि इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है. अगर आप ब्लाइंडली SaaS इंडस्ट्री में घुस जाओगे विदाउट मच एक्सपीरियंस तो आपको काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी. हाँ, शायद काफी सारे लोगों को ये लगेगा कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहना है, वो सारी की सारी चीजें ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको लर्निंग बहुत जरूरी है, आपको इंडस्ट्री के बारे में वर्किंग बहुत जरूरी है. तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि कहीं पे अगर आप 3 महीने पे इंटर्नशिप कर लो तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि इंडस्ट्री का ऑपरेशंस और वर्किंग कैसा होता है. सो बट 3 महीने फिर भी काफी कम होते हैं. मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप कोई भी SaaS कंपनी में एक साल जॉब कर लो. सैलरी के ऊपर फोकस मत रहो, अगर कहीं पे कम सैलरी भी मिलती है तो काम कर लो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. अल्टीमेटली जो पैसे आप कमाओगे वो आपके एक्सपीरियंस पे कमाओगे.
एग्जैक्टली, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी. नंबर वन की थी कि रिसर्च हम अच्छा करें, देखें एग्जैक्टली प्रोडक्ट हमारा कैसा है, क्या है प्रोडक्ट, हम जैसी वेबसाइट पर जाए गूगल पे रिसर्च करें, कंपटीटर्स को देखें. एंड सेकंड वुड भी, अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार हम कर रहे हैं, तो हम इंटर्नशिप या जॉब करें. और मिनिमम एक साल आपने रिकमेंड किया कि एक साल हम जॉब करें ताकि हमको चीज़ें समझ में आए और फिर हमको एक्सपीरियंस मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी. लास्ट क्वेश्चन मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, सारंग ने एक क्वेश्चन पूछा है, सो मैं उसका भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि उनको भी आंसर मिल जाए. उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ इज SaaS डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ कैन वन गेट स्टार्टेड एज अ SaaS मार्केटियर.
इसका भी मैंने आंसर शायद काफी बार थ्रू आउट इंटरव्यू दिया है कि आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है एज अ मार्केटर भी, तो आपको इंडस्ट्री के बारे में समझना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल टर्म्स लाइक चर्न रेट क्या होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर क्या होता है, देन उसके बाद आपका कैक क्या है. तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी होगी कि इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, कहाँ कहाँ पॉइंट है जहाँ पे यूजर्स का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है. तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी. तो अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो मेरा रिकमेंडेशन वही होगा कि आप कोई SaaS कंपनी ज्वाइन करो एज एन इंटर्न या तो फिर एज अ फ्रेशर. स्पेसिफिकली SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी नहीं, जो एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल कर रही है, ना कि जो एक सॉफ्टवेयर एजेंसी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी, उनके साथ नहीं. और इतनी सारी नई नई SaaS कंपनी आ रही है, अगर आप जाके 10 को भी अप्रोच करोगे और पिच करोगे आपके आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी पिच करोगे, तो इंस्टेंट आपके सर्विसेज या आपको खुद पिच करो कि आपको जॉब चाहिए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो 10 में से एक कंपनी तो आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली दिखा देगी. उसके बाद आप जाओ सीखो कि कैसे क्या ऑपरेशन होता है, कैसे क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या सोल्यूशन है, किस टारगेट मार्केट पे वो फोकस कर रहे हैं, एंड उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स यूज करने स्टार्ट करो कि आप यूजर्स एक्वायर करने स्टार्ट करो. जब यूजर्स एक्वायर करोगे तो उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम समझो क्या है, और अगर वो कैंसिल कर रहे हैं अपने अकाउंट तो वो भी समझो कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं. इस तरीके से ही आपको इंडस्ट्री के बारे में और पता चलेगा.
Awesome, that's a great advice. और एक चीज आपने जैसे कि जॉब का बोला, तो is PitchGround having have any vacancy for interns? अगर आप interns अभी hire कर रहे हो तो maybe you can tell, तो maybe अगर कोई सुन रहा है किसी को internship करनी होगी, लेकिन अगर कोई vacancy हो तो.
So definitely मैं talents constantly देखता रहता हूँ. अगर कोई talented person है तो I keep looking for it. अगर कोई भी talented person है जिसको SaaS industry में घुसना है, बट दे आर एंथुजियास्टिक अबाउट SaaS as an industry, उनको डेफिनेटली इफ दे आर रेडी टू पुट इन 1000% right, then they can send out an email to me at udit@pitchdown.com. So aap mujhe email kar do, definitely I'll get back.
Awesome, awesome. Thank you so much, Udit, for that. So, जिसको भी अगर SaaS industry में enter करना और वो willing hard work करने के लिए ready है, 1000% देने के लिए ready और enthusiastic है, dedicated है, तो आप udit@patreon.com पे उनको email कर सकते हो. Thank you so much, Udit, for your time. बहुत अच्छा लगा आपके साथ interact करके. आपने बहुत सारी अच्छी चीजें share की. To be honest, मेरे mind में भी कुछ SaaS product की चीजें चल रही थी कि मैं कैसे launch करूँ, पर आपने मेरा भी mindset change किया कि quality पे focus करें, बजे हम cheap like 10,000-20,000 के developer hire करके हम काम करें, तो हम quality पे focus करें. So that's great. Thank you so much. मेरा mindset change करने भी also listeners को इतनी value provide करने के लिए. Thank you so much for your time for coming on the show.
No problem. Pleasure is mine and thank you for having me.
थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड. अगर आपने एपिसोड यहाँ तक सुना है और अब तक आप ये सुन रहे हो, तो आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ. आपने अगर एपिसोड अब तक सुना है, तो आपको मिलेगा फ्री 15-minute कंसल्टेशन कॉल मेरे तरफ से. जी हाँ, जो कि मेरा कंसल्टेशन कॉल पेड होता है, बट आपको फ्री मिलेगा. बट आपको ये कुछ छोटे से स्टेप्स फॉलो करने, आई एम श्योर आप वो स्टेप्स पक्का फॉलो करोगे. अगर आपको मेरे साथ 15 minutes का फ्री 1-on-1 कॉल चाहिए, जूम कॉल और इंस्टाग्राम कॉल, तो आपको बस क्या करना है, जहाँ पे भी आप एपिसोड को सुन रहे हो, इंस्टाग्राम सॉरी आप सुन रहे होंगे स्पॉटीफाई पे, anchor.fm पे, एप्पल पॉडकास्ट पे या iTunes पे, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे भी आप सुन रहे हो. आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी और आपको 3 learnings शेयर करनी है, 3 या 1 learning या 2 learning, जो भी है, जितनी भी आपने चीज़ें सीखी है, बस आपको मेंशन करना है कि आई लर्न दिस दिस थिंग फ्रॉम दिस एपिसोड. और मुझे टैग कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @thePiyushKukreja, TheePiyushKukreja, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, आप वो भी देख सकते हो. मुझे टैग करो और उसके बाद मुझे मैसेज करो. आपको मिलेगा फ्री 1-on-1 कॉल विथ मी, 15-minute 1-on-1 कॉल विथ मी. आप मेरी स्टोरीज भी देख सकते हो, पिछली स्टोरीज में रोज किसी न किसी के साथ, रोज 2 या 3 लोगों के साथ मैं कॉल कर ही रहा हूँ. तो अगर आप ये मौका, और ये ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं होगा ये एपिसोड, अगर सुन रहे हो तो यू आर द लकी वन. सो जस्ट जाइए इंस्टाग्राम पे, टैग कीजिए, अपनी लर्निंग शेयर कीजिए और आपको मिलेगा 15 minutes फ्री कंसल्टेशन कॉल बाय पीयूष कुकरेजा एंड मे बी मोर एक्साइटिंग प्राइजेस. जस्ट आपको टैग करना है. एंड गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर शाम के 6 बज रहे होंगे तो समझ जाना द पीयूष कुकरेजा शो का न्यू एपिसोड आ चुका होगा. सो बाय बाय, टेक केयर.